ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमं ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक नंबर 20। श्री शुक उवाच इति समभीता महाभागवतः भगवतः त्रिभुवना गुरः अनुशासनम् आत्मनः लघुतया अवनत शिरोधरः बाढम् इति सबहुमानम् उवाह। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवत श्रीभुव गुरोरनुशासनम् आत्मना लघुतयावत् शिरोधर बाढम् इति सबहुमानमुभाव। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवत स्त्रीभुवन गुरोरनुशासनम् आत्मना लघुतया वनात् शिरोधर बाढम् इति सबहुमान उवाह। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवत स्त्रीभुवन गुरोरनुशासनम् आत्मनो लघुतया वनत शिरोधर बाढम् इति सबहुमानम् उवाह। शब्दानुवाद श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति ही इस प्रकार समभिहितः पूर्णतया उपदिष्ट महाभागवतः परम भक्त भगवतः अतिशक्तिमान ब्रह्मा जी का त्रिभुवन तीनों लोगों के गुरु हो, गुरु की अनुशासनम आज्ञा व आदेश, आत्मनः स्वयं का लघुतया लघुता का कारण अवनत झुका हुआ शिरोधर उसका सिर वाढ़म जो आज्ञा इति इस प्रकार सबहुमानम अत्यंत आदर समेत उवाह पालन किया। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा जी द्वारा भलीभांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदरपूर्वक उसका पालन किया। कौन पालन किया? ध्यानपूर्वक आप लोग सुन रहे हैं, आज तक 20 दिन हो गया ये कथा चल रहा है। इसलिए प्रियव्रत, हमारे भी इस प्रकार के व्रत होगा, हम भी भगवान का प्रिय बन जाएंगे। तात्पर्य, श्री प्रियव्रत ब्रह्मा जी के पौत्र थे, अतः सामाजिक शिष्टाचार के नाते उनका पद छोटा था और छोटो का यह धर्म है कि वे अपने गुरुजन के आदेश का पालन करें। इसलिए प्रियव्रत ने तुरंत कहा, जो आज्ञा, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। प्रियव्रत का महाभागवत अर्थात महान भक्त कहा गया है। महान भक्त का यह कर्तव्य है कि वह अपने गुरु अथवा गुरु के भी गुरु की आज्ञा का परंपरा अनुसार पालन करे। जैसे कि भगवद्गीता में 4:2 श्लोक में कथित है, एवं परंपरा प्राप्तम, मनुष्य को गुरु परंपरा के परंपरा से भगवान के आदेश प्राप्त करने होते हैं। भगवान का भक्त अपने को भगवान के दासों का भी दास मानना है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं नृप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरोन वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतमसवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदन सागण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी को कृष्ण बलराका मंदिर का ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले आपसे प्रश्न की पूछता हूँ, प्रश्न तो नहीं है लेकिन फिर भी आज का कथा, मतलब ये कथा जब से चल रहा है 20 दिन हो गया, 20 श्लोक चल रहा है, आज का दिन में पहली बार आए थोड़ा हाथ उठाइए, आज के लिए पहली बार ये श्लोक के लिए, क्योंकि पहले से फिर चर्चा करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए मैं पहले पूछा, क्योंकि फिर भी आपको पीछे का तरफ से नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा ब्रीफ दे दे रहा हूँ। ये प्रियव्रत का जो चरित्र है बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है। हमको सुनते तो हमारा व्रत में हमें निष्ठा हो जाना चाहिए, हमारा व्रत में निष्ठा हो जाना चाहिए। और आज का जो श्लोक है, ये श्लोक ज़्यादा से ज़्यादा गुरु का आदेश को कैसा पालन करना ये बताया गया, और हमारा जो गुरुजन होते हैं उनका आदेश को कैसा पालन करना, इसका ऊपर चर्चा किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है। तब प्रियव्रत स्वयंभू मनु के पुत्र थे, और उनका दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। और प्रियव्रत निष्ठापूर्वक भजन करने के लिए चले गए, जिस प्रकार हमारा भक्त लोग घर द्वार छोड़ के आके ब्रह्मचारी बन जाते हैं, इसी प्रकार स्वयं इसी प्रकार स्थिति अभी है, इनका स्थिति ऐसा ही है। लेकिन कभी कभी प्रियव्रत को समझाने के लिए पिताजी पहले समझाए हैं, फिर पिताजी स्वयंभू मनु समझाए, फिर भी नहीं, वो निष्ठापुर को भजन करने लगे और जाके गंधमार्दन पर्वत के ऊपर। तब फिर उनका पास स्वयं ब्रह्मा जी आए समझाने के लिए, क्यों समझाना है, वो निष्ठा का भक्ति कर रहा है, कोई आकर समझाएगा डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन हम लोग को सोचते हैं वो भक्ति का पतन हो जाता है, ऐसा नहीं, भक्ति में पतन नहीं होता है। भक्ति का पतन कब होता है, जब घर गृहस्थ पत्नी द्वारा सुत प्रति आसक्त होता है, वो भक्ति में पतन होता है। लेकिन प्रियव्रत का दृष्टि शक्ति ऐसा नहीं था, प्रियव्रत का मन कामना कुछ भी नहीं था, प्रियव्रत हमेशा संलग्न थे भक्ति में, दृढ़ निष्ठा के साथ भक्ति करना, कोई पारिवारिक साथ कोई मतलब उनका कुछ भी रिलेशन नहीं। ब्रह्मा जी आकर समझाए, बोले ये भगवान का आदेश है, आपको गृहस्थ बनना है और राजा का राज्य भार संभालना है प्रियव्रत को, ब्रह्मा जी आके। तो ब्रह्मा जी का प्रियव्रत रिलेशन में क्या होंगे, उड़िया भाषा में नाती बोलते हैं, उड़िया में बोलते हैं नाती, और हम लोग क्या बोलते हैं, नाती बोलते हैं, बेटा का बेटा पोता बोलते हैं, बेटा का बेटा को पोता बोलते हैं। यहाँ पे संस्कृत शब्द में आया पौत्र, तब इसीलिए कम से कम इन कभी कभी पिता का बात को टाल देते हैं, बेटा पिता का बात को कभी कभी टाल देता है, लेकिन जो पिताजी का पिताजी मतलब दादाजी, दादाजी का बात को थोड़ा टालना मुश्किल हो जाता है। दादाजी समझाता है प्यार से, बोला देखो कोई मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए सारा संपत्ति है, कभी कभी समझाते हैं। तब फिर उनका बात में वो सहमत हो जाता है, क्योंकि बड़े व्यक्ति का बात को मानना छोटा व्यक्ति का ये कर्तव्य है, और प्रियव्रत बहुत छोटे थे, इसलिए यहाँ पे दिया गया नमस्कार किया, पहले दंडवत किया, नमस्कार करके बोला जो आज्ञा मैं हजूर। और यहाँ पे एक ही शब्द आता है महाभागवत, इसी श्लोक में देखिए एक ही शब्द आता है महाभागवत। महाभागवत प्रियव्रत को आज तक श्लोक में 20 नंबर श्लोक तक कम से कम प्रियव्रत को क्या क्या कहा गया, प्रियव्रत को एक बार कहा गया, पहला श्लोक में कहा गया भागवत, आज कहा गया महाभागवत, और पहला श्लोक में फिर कहा गया था आत्माराम, दूसरा श्लोक में कहा गया मुक्ता संगानाम, संपूर्ण मुक्ति पा चुके हैं, और तीसरा नंबर श्लोक में कहा गया प्रियव्रत को महताम, क्या क्या संबोधन करते हुए उच्चारण किया जा रहा है, और कितने बड़े भक्त है प्रियव्रत होने का नाते, फिर भी ब्रह्मा जी का पास चरण कमल को पकड़ के दंडवत प्रणाम कर रहा है। इसलिए छोटे व्यक्ति हमेशा के लिए बड़े व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए कहाँ भी, और कभी कभी देखा जाता है, कभी कभी हमें सिंहासन पर कि आसन पर बैठे हैं, तब कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, छोटे व्यक्ति इमीडिएटली खड़ा हो जाना चाहिए, ये शिष्टाचार ये शिष्टाचार, ये संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है और ये शिष्टाचार है। और यही कर्म कौन किया? प्रियव्रत ने। और करके हाथ जोड़ कर कहा, जो आज्ञा आप जो कहेंगे मैं पालन करूँगा। प्रियव्रत को महाभागवत अर्थात महान भक्त कहा गया। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गुरु का ऊपर आलोचना किया गया, गुरु का बात को पालन करना शिष्य का कर्तव्य है। पहले जानना चाहिए गुरु कितना प्रकार के होते हैं। गुरु चार प्रकार के होते हैं, इसलिए अभी हम लोग का जीबीसी में पास हुआ डिसाइपल कोर्स करने के लिए। क्यों? पहले शिष्य को जानना चाहिए गुरु कैसा ढूंढना है, गुरु कौन हो सकता है, गुरु का क्या कर्तव्य है, गुरु ग्रहण करने से क्या होता है, इसके लिए डिसाइपल कोर्स में शिक्षा मिलता है, इसलिए बना गया। पहले तो कुछ नहीं, डिसाइपल कोर्स नहीं था। हम लोग जब दीक्षा लिए थे कभी डिसाइपल कोर्स हुआ था? आप जितने से भक्त बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग को डिसाइपल कोर्स पहले कुछ नहीं था। पहले सिस्टम होता था जो मंदिर में जो भी भक्त ज्वाइन किया कि जो मंदिर का साथ जो भी भक्त जोड़ा है वो मंदिर में जो महाराजा जीबीसी है उससे दीक्षा लेना जरूरी है। ये एक ही सिस्टम थला पहले से ये था, लेकिन अभी ये सब नहीं। अभी सिस्टम संपूर्ण चेंज करके देखा गया, थोड़ा से त्रुटि आया तब अलग अलग सिस्टम बना गया। अभी सभी कुछ क्लासेस होता है, सब क्लास से पढ़ाई किया जाता है, डिसाइपल कोर्स होता है, भक्ति शास्त्री होता है, हाँ फिर भक्ति वैभव होता है, क्योंकि पढ़ के हमको जानना चाहिए इसलिए ये किया जाता है। तब गुरु कौन है, गुरु का कर्तव्य क्या है? जिनकी वाणी में जीव को उसके स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित करने की गुरुत्व का क्षमता होता है वह गुरु होता है, ये ध्यान दीजिए। इसलिए हमें पहले प्रार्थना करते हैं ना, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, प्रार्थना करते हैं या हमें प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, नमो ओम, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ओम मतलब ओम का अर्थ यहाँ पे गुरु आ गए, ओम का शब्द जो है ये गुरु पदवाच्य हो गया। नमो ओम विष्णु पादाय, विष्णु जो विष्णु का पद को धारण किया है, विष्णु पाद का चरण में आश्रित तो हुआ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय, कृष्ण का पृष्ठभूमि है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। फिर एक श्लोक आता है, मैं पहले कभी कहाँ पे मंगलाचरण चालू करते तो पहले बोलते हैं क्या, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, ओम अज्ञान, ओम मतलब यहाँ पे गुरु, अज्ञान, अज्ञान मतलब मेरा अज्ञान अंधकार से, अंधकार मतलब अंधकारतम, तिमिर अंधस्य मतलब घोर अंधकार से मेरा को जो उद्धार करने वाले, मेरा ज्ञान को प्रकट करने वाले, ओम अज्ञान तिमिर अंधर से ज्ञानांजन, वो ज्ञान को प्रकट करने वाले, चला कया चक्षुरुन, और मेरा चक्षु को खोल दें, मेरा चक्षु अभी बंधन है, अभी मैं अंधा हूँ, चक्षुरुन उन्मिलितम, मेरा चक्षु को ओपन करें। तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसीलिए ओम शब्द गुरु का पदवाच्य। इसलिए गुरु कौन, और गुरु चार ही प्रकार की है, कितना प्रकार की? चार प्रकार। एक ही है, पहला है पथ प्रदर्शक गुरु, एक ही है पथ प्रदर्शक गुरु, दूसरा शिक्षा गुरु, तीसरा दीक्षा गुरु, चौथा है चैत्य गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु का क्या कर्तव्य है, शिक्षा गुरु का क्या कर्तव्य है, दीक्षा गुरु का क्या कर्तव्य है, और चैत्य गुरु का क्या कर्तव्य है, ध्यान दीजिए। पथ प्रदर्शक गुरु का जो हमें यथार्थ गुरु का आश्रय दिलाता है, आश्रय देने के लिए मतलब पथ प्रदर्शक मतलब ये रास्ता दिखाई देता है, ये आपका सही गुरु है, रास्ता दिखाई देगा, ये संस्था में आपको जोड़ेंगे, मतलब ये है पथ प्रदर्शक गुरु का कर्तव्य है। और शिक्षा गुरु जो सत्संग के द्वारा भक्ति का उपदेश को प्रदान करता है वो शिक्षा गुरु होता है, सत्संग से जो प्राप्त किया और दूसरा को बांटा। अभी आप जितने सब बैठे हैं एक एक शिक्षा गुरु, सभी लोग यहाँ पे शिक्षा गुरु है, अभी दीक्षा गुरु अभी कोई नहीं बना,
हो सकता है कोई बाद में, पता हमको अभी नहीं चल रहा है, हो सकता है आगे जाके बढ़ के दीक्षा गुरु बन सकता है, और उस साधु को हम ऐसा नहीं देख सकते ना। गुरु जो होता है डायरेक्टली लिंक होता है भगवान कृष्ण के साथ। हमें जड़ इंद्रिय, जड़ शरीर, जड़ बुद्धि में गुरु को पहचान नहीं पाते हैं, गुरु को ऐसा पहचान नहीं पाते हैं। अभी संसार में लगभग करोड़ों करोड़ गुरु बन चुके हैं, करोड़ों करोड़ गुरु बताएंगे गुरु के संप्रदाय में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। संप्रदाय विहीन मंत्र विफला मतहा, संप्रदाय भी में नहीं आने वाले गुरु का जो मंत्र है वह मंत्र कोई काम नहीं करने वाला, कोई मंत्र काम नहीं करने वाला, वह मंत्र फल प्रदान नहीं करने वाला। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है, चौथा स्कंद 8 अध्याय श्लोक नंबर 53 में वर्णन है। मंत्र जब तक परंपरा से प्राप्त नहीं होता है कि उच्चारण के लिए कोई लाभ नहीं होगा। मनुष्य कहीं भी प्रकाशित मंत्र प्राप्त कर सकता है, किंतु मंत्र जब तक परंपरा श्रेणी में होकर स्वीकृत न हुआ हो तब परंपरा से प्राप्त हुए बिना उच्चारण किए जाने पर कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए परंपरा में गुरु होना चाहिए। मैं यहां पे बता रहा था शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु का बाद आता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का क्या कर्तव्य है, जो वैदिक विधि से शिष्य को वैदिक मंत्र प्रदान करता है, वैदिक विधि से। और ये परंपरा में आना चाहिए। 4 परंपरा है, क्या क्या है, श्री परंपरा, रुद्र नहीं संप्रदाय, संप्रदाय 4, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। 4 संप्रदाय, ये संप्रदाय के सब आचार्य है। श्री संप्रदाय का आचार्य है रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य है माधवाचार्य। इसलिए हमारा संप्रदाय का नाम क्या है, ये डिसाइपल कोर्स में पहला क्वेश्चन आता है, हमारा संप्रदाय का नाम क्या है, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय, ये लिखना पड़ता है, ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय। माध्वाचार्य जो है हमारा आचार्य है, और ब्रह्मा जी से आया, ब्रह्मा जी का गुरु कौन है, स्वयं कौन है, भगवान। और वो क्या कान से सुने, ब्रह्मा जी कभी कान से सुने थे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नाभि कमल से निकले, और वो जो क्या था कमल का नाड़, कमल का जो नाली है उसी में ही श्रवण किए, दिव्य ज्ञान उस डायरेक्ट है। ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश हुआ, डायरेक्ट कनेक्शन। अब ब्रह्मा जी फिर किसको शिष्य बनाए, नारद जी को, नारद जी का व्यासदेव, इस प्रकार गुरु परंपरा। इसलिए श्री प्रभुपाद यहां पे कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो दिव्य ज्ञान है परंपरा में आना चाहिए, परंपरा में आना चाहिए और ये मंत्र काम करेगा। परंपरा विहीन नहीं, परंपरा में आना चाहिए। कभी बहुत सारे लोग का मन में विचार आता है हमें दीक्षा ले चुका है, दीक्षा ले चुका है, कभी की बहुत सारे वृंदावन में आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने गुरु मंत्र ले चुका हूं, उन्हें बोलो कौन सा मंत्र, ना बोलूंगा नहीं, मंत्र फिर बोलना नहीं होता है क्या। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको सरल बनाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ये विधि को खंडन करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु का आके हरिनाम दिया, स्वयं चैत्य गुरु का रूप में आके ये धरती पे। इसीलिए और ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का आचार्य ब्रह्म संप्रदाय का जो आचार्य है ये है माधवाचार्य, और रुद्र संप्रदाय का आचार्य जो है विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय का जो आचार्य है निम्बार्क का आचार्य। ये 4 संप्रदाय का अंदर गुरु होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। संप्रदाय में नहीं है इसका उधार होने वाला नहीं, ये ध्यान दीजिए। कोई भी मंत्र गा ले, कोई भी अपना मन से कोई मंत्र लिख लिया और ये मंत्र रटते रहा, गुरु पादाश्रय होना चाहिए, गुरु का आदेश को फॉलो करना चाहिए, गुरु का आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कहते हैं पद्म पुराण में कहते हैं, पुत्रों को पिताजी का आदेश को पालन करना जरूर चाहिए। पिता और माता का जो ठीक से पुत्र होकर सेवा नहीं कर रहे, ठीक होते हुए सेवा नहीं कर रहे, पिता माता को दूसरा देश भेज देता है, पिता माता का कभी भी बात नहीं सुनता है, पिता माता को अलग जगह पे देखने के लिए जाता भी नहीं है, वो पुत्र को कितने हजार साल नरक भेजा जाता है, ये पद्म पुराण में वर्णन है। इसीलिए यहां पे ब्रह्मा जी का आदेश को संपूर्ण पालन करने के लिए प्रियव्रत हाथ जोड़ कर खड़ा हो गए, जो आज्ञा आपका, ऐसा हमारा होना चाहिए। और शिष्य का कर्तव्य वही है, गुरु का आदेश हो गया ये करना है, इसे हिलना नहीं। जैसा हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठते थे, राम का चरण कमल पे बैठते थे, जो आज्ञा। जब लक्ष्मण को क्या हुआ था, ये क्या बोलते हैं इसको, सुना नहीं दे रहा, मतलब वो बंधन में फंस गया ना, बाण में फंस गया, नागोफास में फंस गया, तो वो हनुमान मतलब राम जी देख के आश्चर्य जो है, हनुमान जी को बुलाए, बोले जाओ उसके लिए औषधि लेकर आओ। तब सीधा हनुमान जी आगे पीछे और नहीं देखे, भगवान राम का आदेश है, सीधा उड़ने लगे जाके और पर्वत को उठा के, सारा मेडिसिन का जो लगा हुआ था वो रावण का नगरी में था, वो मेडिसिन को उठा के सीधा एक ही पर्वत को उठाकर सीधा लेकर आ रहा है। खरा हो इसी प्रकार शिष्य का कर्तव्य है, जो आज्ञा ये करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर ये चार संप्रदाय के अंदर गुरु होना चाहिए, और चौथा नंबर गुरु होते हैं चैत्य गुरु। सभी जीव के हृदय में स्थित परमात्मा ही सबका अच्छे बुरे ये ज्ञान प्रदान करते हैं, वो भी सबके चैत्य गुरु है। परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति का अंदर भगवान विराजमान है, वो चैत्य गुरु रूप में है, ये जानना चाहिए। और दूसरा अर्थ में, पहले समय पे पिताजी समझाता था बेटा को, बाबा आपका उम्र हो गया अभी शादी कर लो, सही पिताजी पहले जबान में समझाता था। और कि गुरु नहीं तो समझाते थे, अभी संपूर्ण उल्टा, अभी का समय का स्थिति देखिए, अभी संपूर्ण क्या है, उल्टा है। अभी पिताजी को बेटा समझा रहा है, बेटा समझाता है मैंने शादी करना है, मैं ये लड़की को पसंद किया, पिताजी को समझाता है बोला ये नहीं करेगा तो मैं घर छोड़ दूंगा। और उसी प्रकार शिष्य का भी ऐसा हो चुका है, गुरु जानता है लेकिन अभी शिष्य गुरु के पास नहीं जा रहा है। शिष्य क्या करता है, थोड़ा सा मैं तो लाल पहन लेते हैं, सोचते लाल पहनने थोड़ा मैला नहीं होगा, गंदगी नहीं होगा, पहन लेते हैं, अच्छा लगता है ना लाल, थोड़ा साफरन में अच्छा लगता है, और साफरन में ज़्यादा भी दक्षिणा मिलता है, मैं पहन लेते हैं। तो थोड़ा दिन का बाद क्या होता है, एक बार महाराज बोल रहे थे, बोले भक्त लोग आते हैं कुछ दिन के बाद ब्रह्मचारी तो बन जाते हैं, फिर बाद में गुरु का पास जाते हैं, अपना सब ठीक ठाक रेडी कर लेते हैं, अपना सब रेडी कर लेते हैं, गुरु का पास जाकर बोलते हैं मेरा पिताजी बोल रहे हैं शादी करना है, पिताजी नहीं बोला, अपना मन के बात, और गुरु का पास जाकर प्रकट कर रहे हैं। गुरु पहले से ऐसा नहीं बोले कि तुम लाल पहनो, तुम्हारा संपूर्ण निष्ठापूर्वक भक्ति करना है, तुम निष्ठापूर्वक, क्योंकि ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, ज्यादा से शास्त्र में वर्णन है चार प्रकार के, ब्रह्मचारी चार प्रकार, गृहस्थ चार प्रकार, वानप्रस्थी चार प्रकार, संन्यास चार प्रकार, लेकिन ज्यादा से ज्यादा माना जाता है ब्रह्मचारी दो प्रकार की, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, दूसरा है उपक्रुबाण ब्रह्मचारी। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिंदगी भर के कभी कोई नारी का संग नहीं करता है, नारी का दर्शन नहीं करता है, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नारी को स्पर्श भी नहीं करेगा, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उपक्रम ब्रह्मचारी जो होते हैं उनको आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है शादी करने के लिए, उपक्रमण, और शादी करने का विधि भी दिया जाता है, गुरु आदेश देता है गृहस्थ जीवन को बिताने के लिए, गृहस्थ धर्म को कैसे बिताने के लिए। जो गृहस्थ धर्म को बिताता नहीं वो गृह मेधी कहा जाता है। गृह मेधी वही है जो घर प्रति आसक्त, पुत्र प्रति आसक्त, परिवार का प्रति आसक्त और उस धन संचय प्रति आसक्त है, उसको गृह मेधी कहा गया। जो इसको छोड़ के संपूर्ण भजन में निष्ठा है उसको गृह मेधी नहीं गृहस्थ कहा गया, इसको गृहस्थ कहा गया, ये ध्यान देना। और गृहस्थ का पहला धर्म है अति सत्कार, पहला धर्म है अति सत्कार, और प्रियव्रत ऐसा स्थिति को पालन किया, वो गृह मेधी में नहीं गृहस्थ अपना धर्म को पालन किया। और ये जो चार वर्ण और चार आश्रम कैसा भगवान से ही सृष्टि होता है ये प्रमाण है। गृहाश्रम जघनत्तो ब्रह्मचर्य हृदय मम ब्रख्य स्थलो दोने वास संन्यास शिरसि स्थित। भगवान उद्धव से कहते हैं एकादश स्कंद भागवत 70 अध्याय श्लोक नंबर 13 में कहते हैं मेरे उरुस्थल से गृहस्थ आश्रम सृष्टि होता है। उरुस्थल मतलब जंघा से, गृहस्थ का सृष्टि कहां से, जंघा से। और ब्रह्मचारी हृदय से। आप सोचो ब्रह्मचारी को भगवान कितने हृदय में गले में मिल रहा है, इतने उच्च स्थान देते हैं। और बक्षस्थल से वानप्रस्थ, बक्षस्थल मतलब ये बाहु, और मस्तक से सन्यासी का आश्रम की उत्पत्ति होती है। ये चार आश्रम भगवान कहाँ से कैसा सृष्टि किया ये ध्यान। फिर विष्णु पुराण में कहते हैं स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 में वर्णाश्रम चारवेता पुरुषेण परह पुमान विष्णु आराधित पंथा नान्यतोष कारणम। परमेश्वर भगवान विष्णु वर्ण और धर्म और वर्णा आश्रम के धर्म चार आचार युक्त पुरुष लोक द्वारा आराधित होते हैं। वर्णाश्रम आचार व्यतीत प्रभु को परितुष्ट करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। जो वर्ण में आप जात हुए फिर भी और जो आश्रम में आप रह रहे हमारा एक ही कर्तव्य है, क्या करना है, प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु को तुष्टि करना है। प्रभु कैसा तुष्टि रहेंगे, संतुष्ट कैसा प्रभु होंगे, प्रभु का सेवा करके प्रभु कैसे संतुष्ट करना, और कोई उपाय नहीं। इसलिए भगवान ने ये चार वर्ण और चार आश्रम बनाया। लेकिन ये चार वर्ण चार आश्रम का विधि के अनुसार अभी कर्तव्य कर रहा है कलयुग में, कोई कर रहा है कलयुग में, चार वर्ण जो चार आश्रम भी, इसलिए तो मना किया गया ना वर्ण है ना आश्रम है कलयुग में, ना वर्ण है ना आश्रम है नहीं। इसलिए प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझाए आप गृहस्थ धर्म को पालन करो और ये भगवान का निर्देश है, निर्देश का अनुसार हमको कर्तव्य करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए अपने, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रो सेवन, माया जल छूटे पाए कृष्ण र चरण। और कृष्ण यदि कृपा करेंगे तब गुरु ऑटोमेटिक मिलेंगे। लोग सोचते हैं गुरु कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, आप भगवान का भजन करो गुरु मिलेंगे ऑटोमेटिक, इसलिए बोलते हैं कृष्ण बिना गुरु नहीं मिले, गुरु बिना कृष्ण नहीं मिलते हैं। लोग कभी कभी हम लोग को माला देते हैं बोलते हैं गुरु कहाँ मिलेंगे, गुरु कहाँ मिलेंगे, थोड़ा भजन करो भगवान के लिए, भगवान का भजन करेंगे भगवान ही भेजेंगे। भगवान का भजन करने मात्र सिले प्रभुपाद को इधर आने का अर्थ क्या है, प्रभुपाद ही धरती में आने का क्या है, प्रभुपाद शुद्ध सात्विक स्तर पर होते हुए फिर भी ये धरती पे आए क्यों, भगवान कृष्ण स्वयं भेजा ये पतित लोग को उद्धार करने के लिए, पतित जनों को उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं भेजा है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन माया जल छूटे। ये माया से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। और किसका आदेश है? गुरु का आदेश है। गुरु का आदेश को फॉलो करना पड़ेगा, तब क्या होगा, माया जाल से छूट के हमें क्या होगा, कृष्ण का चरणों को प्राप्त होगा। माया जाल से छूटने के लिए। और कोई भी कोई किसी के भी मन में प्रश्न आ सकता है, प्रियव्रत संसारिक होते हुए तो भजन ऐसा से किए तब कृष्ण का चरणों को प्राप्त कर लिया? अरे हम जैसे है ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए। हमें ऐसा चीज में देख नहीं सकते वो कौन सा स्थिति पर थे। कभी कभी हम यहाँ पे अपना अपना खुद का गुरु को रियलाइजेशन नहीं कर सकते, गुरु कौन सा स्थिति में होते हैं देख नहीं सकते। अपना प्रैक्टिकल अपना अपना गुरु को देखना चाहते हो। कभी कभी महाराज लोग रात को 12 बजे सोते हैं, कभी कभी 1 बजे सोते हैं लेकिन मंगलारती अटेंड करते हैं, कभी कभी 2 बजे उठ के 1 घंटा 2 घंटा सोते कि नहीं सोते, फिर उठ के अपना शास्त्र को पढ़ाई करते हैं। हमें नहीं देख सकते। हमें तो कम से कम नॉर्मल हम लोग 8 घंटा नहीं सोएंगे तो फिर परेशानी, कि 10 घंटा नहीं सोएंगे तो फिर परेशानी। हमें ये दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। गुरु सब कुछ देने का नाते फिर भी हमें तुष्टि नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ये बहुत अच्छा कहानी है। मेरे पास और कुछ बात बताने के लिए था लेकिन अभी समय हो जाएगा। मेरा जो चीज़ बताने के लिए कि स्टोरी टाइप का है, हमको सब कुछ मिलने का नाते फिर भी हमें किस प्रकार आ सकती है। एक बार एक देश का राजा था, वो राजा ने क्या किया, सुबह उठ के मन में सोचा उसका जन्मदिन था उसी दिन, मन में सोचा मेरा सामने में पहला मेरा सामने में जो भी व्यक्ति आएगा मैं इसको कोई भी चीज ऐसा चीज दे के उसको कैसा संतुष्ट करा दूंगा। राजा ने ये सोचा, सोच के जग गया, सुबह उठा, अपना नित्य कर्म स्नान शौच करके जस्ट बाहर निकला। गेट का बाहर निकलते हुए सामने में एक भिखारी आया तो अपना जेब से निकला, पहले सब सिक्का होता था, सिक्का समझ रहे ना, पीतल का सिक्का, तंबा का सिक्का, ये सिक्का होता था। उन्होंने एक ही पीतल का सिक्का उसका हाथ में दे दिया, लेकिन वो सिक्का उसका हाथ में नहीं गिरा, नीचे गिर पड़ा। नीचे कहाँ पे गिरा? नाली में गिर गया। जब नाली में गिरा तब उन्होंने नाली को ढूंढने लगा। तब राजा ने फिर क्या सोचा, अपना जेब से फिर एक ही चांदी का सिक्का निकला, एक ही चांदी का सिक्का निकाल के उसका हाथ में दिया, लेकिन उसका हाथ में चांदी का सिक्का जाने का बाद फिर भी वो नाली को ढूंढ रहा है, नाली को फिर ढूंढ रहा है। राजा फिर मन में सोचा इसको कैसा करके संतुष्ट करूं। एक ही सोने का सिक्का उसका हाथ में दिया। सोने का सिक्का हाथ में देने का नाते व्यक्ति सोने का सिक्का को प्राप्त कर लिया, फिर भी जाकर वो नाली को ढूंढ रहा है, संतुष्ट नहीं। फिर राजा सोचने लगा क्या हुआ, कैसा उसको संतुष्ट करो। राजा ने उसको बुलाया पास में आइए, बोला देखो आपको पीतल का एक सिक्का दिया था वो गिर गया ठीक, एक चांदी का सिक्का दिया फिर भी आप संतुष्ट नहीं, आपको एक ही गोल्ड का सिक्का दिया फिर भी इसमें आप संतुष्ट नहीं, मैं आपको मेरा राज्य का आधा दे रहा हूँ। आज से आपका नाम से एक ही राज्य का आधा राज्य आपका नाम में रजिस्टर कर देता हूँ। फिर भी रजिस्टर कर दिया, तत्क्षणात रजिस्टर हो गया, फिर भी व्यक्ति जाके क्या कर रहा है, वही नाली को ढूंढ रहा है। राजा मुश्किल में पड़ गया, बोला कैसा व्यक्ति है, मैं आज सुबह उठकर सोचा था सामने में जो भी व्यक्ति आएगा उसको संतुष्ट कर लो, लेकिन व्यक्ति जिंदगी भर के सभी कुछ मिल जाए फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। और उसी प्रकार हम लोग, गुरु ने हमारा हाथ में सभी कुछ दे दिए, हमारा हाथ में सभी कुछ दे दिए, क्या दिए, डायरेक्ट राधा कृष्ण को आपका हाथ में दे दिए, डायरेक्ट आपका हाथ में राधा कृष्ण आने का नाते, फिर भी हमें कहाँ पे लगे हुए, घर गृहस्थी परिवार रिश्तेदार मोबाइल फोन आईफोन व्हाट्सअप फेसबुक सब में लगे पड़े हैं, सही। हमारा हाथ में भगवान स्वयं गुरु क्या दिया, हाथ में क्या दिया, भगवान का नाम जपने के लिए माला दिया, भगवान का नाम में सब कुछ मिल जाएगा, आपका माया जाल छूट जाएगा, आप कृष्ण का पास चला जाओगे, लेकिन फिर भी हमारा आसक्ति वही नाली में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर लास्ट शब्द में कहते हैं, भगवान का भक्त अपने को भगवान के दास 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 100 बार भी दास बोल के लास्ट में अनुदास कहना चाहिए। हमें इसी प्रकार दासत्व को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो हमारा मन में घमंड आ जाता है, हमें बहुत सोचते हैं हमें मालिक बन गए, हमें थोड़ी दिन हुआ इस्कन में आने के बाद थोड़ा माला झूला मिलने के बाद हमें सोचते हैं हमें बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, तो भक्ति डाउन में जाएगा हमेशा के लिए। चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षा है, दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण का भजन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहे, मैं दास दास दासानुदास। और प्रभुपाद भी वही लिखते थे, प्रभुपाद का भी लेटर लिखते थे किसी के पास, प्रभुपाद अपना डिसाइपल के पास भी लेटर लिखे, अब देखिए। और कोई भी भक्त हमारा कोई भी ईमेल करता है, किसी भक्त के पास लेटर भेजता है, क्या लिखता है, आपका दासानुदास दिजोराज दास, दासानुदास प्राण गोविंद दास, दासानुदास दिस दास दिस दैट, सही ऐसे ही लिखा जाता है। इसलिए दासत्व को स्वीकार करना पड़ेगा तब जाके, ठीक है। 9 बज गया, यहीं पे कथा को विराम करते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरुशिला प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे। कोई त्रुटि रहता क्षमा कर दीजिएगा। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।